साथियों नमस्कार, आप सुन रहे छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर। आज छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से हमारे साथ रूबरू होने जा रहे पूर्व आईएएस अधिकारी वरद मूर्ति मिश्रा जी। नमस्कार सर जी।
नमस्कार। नमस्कार दिनकर जी।
सर जी, हम आपसे जानना चाहते कि प्रदेश में आपके द्वारा एक राजनीतिक दल का गठन किया गया, इस दल को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है?
दिनकर जी, ये इच्छा मेरे मन में बहुत पहले से थी। नौकरी में रहते हुए मैंने जो शासकीय अव्यवस्थाएं हैं और विभिन्न नेताओं का, दोनों दलों के नेताओं का जो कार्य करने का तरीका है और खासकर उनकी जो समझ का स्तर है, उसको मैंने 20-25 सालों की नौकरी में बहुत नजदीक से देखा। और मेरा ये मानना है कि वर्तमान में प्रदेश में जो समस्याएं हैं, चाहे वो किसानों की हों, चाहे बेरोजगारों की हों, चाहे मजदूरों की हो, चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की हो, रिटायर्ड पेंशनर्स की हो, सब प्रकार के लोगों की समस्याओं का कोई भी हल इन दोनों दलों के पास नहीं है। और ये मुझे पहले से ही मन में उनको सब देख के सुन के ये लगता था कि नहीं, ये लोग इस संबंध में कोई भी काम नहीं करना चाहते। तो ये प्राथमिक आधार था कि मुझे लगा कि हम एक राजनीतिक दल बनाकर, क्योंकि आप जानते हैं कि शासकीय अधिकारी जो है उसकी बहुत सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं के अंदर रहकर वो इतनी बड़ी चीजों के लिए काम नहीं कर सकता। इसलिए मुझे बेहतर लगा कि मैं एक नौकरी से अपना वीआरएस लूं और वीआरएस लेकर राजनीतिक दल बनाऊं और लोगों के बीच जाकर लोगों की बात करूं। जी
सर जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, वास्तविक भारत पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में क्या प्रत्यक्ष चुनाव मैदान में उतारेगी 2023 में?
बिल्कुल, हम पूरे 230 सीटों पर, जो मध्य प्रदेश की कुल विधानसभा सीटें हैं, इन सभी सीटों पर चुनाव लड़वाने के लिए हम लोगों को अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे।
सर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यह जो चुनाव भी मैदान में आप प्रत्यक्ष उतारोगे वास्तविक भारत पार्टी की ओर से, तो किन मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में प्रत्यक्ष चुनाव लड़ेंगे?
देखिए, चुनाव के मुद्दे यही है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। मध्य प्रदेश में आज की डेट में 50 लाख से ऊपर बेरोजगार युवा है। इसका मतलब ये है कि केवल ये गिनती 50 लाख की नहीं है, इसका मतलब है कि 50 लाख परिवारों के सामने रोजगार का संकट है। और अगर हम एक परिवार में 4 से 5 आदमी माने, तो प्रदेश में 2 से 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके परिवारों में उनका खर्चा चलना या रोजी रोटी चलना मुश्किल है। तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारों का है। दूसरा मुद्दा किसानों का है, कि किसानों को खाद बीज अच्छी नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश में नकली खाद बीज के सबसे ज्यादा मामले पूरे देश में, राज्यों में, मध्य प्रदेश में है। तीसरी चीज के जो खाद बीज मिल भी रही है उसके लिए लाइनें लग रही हैं, किसान पीटे जा रहे हैं, पुलिस जो है किसानों को मारपीट कर रही है, कई प्रकार की इस तरह की समस्याएं हैं। अच्छे स्कूल नहीं है, टीचर्स की ट्रेनिंग का अच्छा इंतजाम नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। जन्नी एक्सप्रेस को आप रात में 12 बजे कहीं पर भी अगर आप फोन करके देखें तो लोगों का 10 बार अगर फोन करें तो 2 बार ही वो फोन उठता है और 2 बार ही लोगों को उस तरह का सुविधा मिलती है। तो किसी भी मोर्चे पर हम जाकर देखें, आम नागरिक को ना तो कोई सुविधा है और ना ही उनके लिए कोई व्यवस्था, बेहतर व्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में, जब पिछले 30 सालों में ये दोनों दल जो मूलभूत मुद्दे थे, बेरोजगारियों के, किसान के, महिलाओं के, मजदूरों के, कुपोषण के, विद्यार्थियों के, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पेयजल, इन मूलभूत मुद्दों पर इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। तो इसलिए जरूरी है यही मुद्दे लेकर हम जनता के सामने जाएंगे।
सर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान में यदि हम देखें तो किसानों की समस्याएं बहुत अधिक है और उनको उनके फसलों का भी भाव नहीं मिल पा रहा है। यदि आज हम कपास की बात करेंगे तो कपास के भाव में उनकी लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। इस संबंध में आपकी क्या राय है?
हमारा कहना है कि हम प्रत्येक फसल का मूल्य जो है वो लागत मूल्य के आधार पर तय करेंगे। हम लागत मूल्य के आधार पर तय करेंगे। ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, आज आपसे फिर कह रहा हूँ। किसानों को जब तक उनकी लागत मूल्य के आधार पर फसलों का उनको कीमत नहीं मिलेगी, तब तक हमारा किसान उन्नत नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी चीज है और ये होना चाहिए।
सर जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के राजनीति में यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आज तक तीसरा राजनीतिक दल कभी भी सफल नहीं हुआ, इस पर आपकी क्या राय है?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से नहीं हुआ, लोगों ने प्रयास भी नहीं किया, जो प्रयास हुआ अभी छोटा मोटा, वो प्रयास उस समय शायद मतलब लोगों को नहीं बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन इस समय लोग जो हैं दोनों दलों को पिछले 30 सालों में दो दो तीन तीन बार दोनों दलों को मौका दे चुके हैं। और जो हम लोगों का भी मानना है, उस सर्वे में जो बात निकल कर आई, इस समय मध्य प्रदेश में तीसरे दल के लिए जो संभावना है और लोगों का मन इस समय तीसरे ऑप्शन के लिए, तीसरे विकल्प के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, जो कि पहले कभी नहीं था। पिछले 50 सालों में जनता ने, लोगों ने तीसरे विकल्प की इतनी ज्यादा आवश्यकता महसूस नहीं की जितनी इस समय है। तो इसलिए मुझे लगता है कि तीसरा दल जो भी हो, लेकिन इस बार जो है तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश में मजबूती से स्थापित हो जाएगा।
सर जी, आपसे अंतिम प्रश्न। सर, आपने छिंदवाड़ा जिले के सौसर विकासखंड में अनुभागीय अधिकारी के तौर पर लंबे समय तक कार्य किया, क्योंकि हम आपसे जानना चाहते कि सौसर क्षेत्र में, या तो हम पूरे छिंदवाड़ा जिले में यदि बात करते हैं, तो यहाँ पर अवैध खनन के बहुत मामले आ रहे, इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे?
देखिए, अवैध खनन जो है वो केवल सौसर या छिंदवाड़ा की समस्या नहीं है। वो कमोवेश मतलब जहाँ जहाँ भी कुछ भी खदानें हैं, चाहे वो रेत की हो या दूसरे खनिजों की हो, तो ये एक संस्थागत रूप ले चुका है अवैध उत्खनन। और इसके लिए जरूरी है कि जब शासन स्तर से बहुत सारी चीजों में बदलाव हो, व्यवस्था में बदलाव हो, और इसको कैसे रोका जाए इस पर विचार विमर्श हो, और विचार के बाद विशेषज्ञों की राय लेकर जो व्यवस्था बनाई जाए, उस व्यवस्था को शासन लागू करे, तब जाके ये सब चीजें रुक पाएंगी। आप जानते हैं, किसी भी अवैध काम को रोकने के लिए सबसे पहली चीज है कि एक बड़ा सख्त कानून अगर हो, और वो कानून ऐसा हो जिसमें किसी को छूट न मिले, ना सत्ताधारी दल के लोगों को छूट मिले, ना किसी माफिया को छूट मिले, तो अपने आप चीजें दुरुस्त होने लगती है। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका, कि आपने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से रूबरू होकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने अपनी राय साझा की। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी आपका धन्यवाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर
जी। थैंक यू वेरी मच जी।